ओम शांति। मधुबन तपोभूमि में पिछले 2 दिन से तपस्या का, साधना का बहुत ही सुंदर अनुभव हम सभी कर रहे हैं। उस अनुभव की श्रृंखला को बल में, शक्ति में परिवर्तित करने के लिए आज हम सब के बीच में पधारे हैं परम आदरणीय दादी जी। आखिर वह दिन आया आज। दादी जी जब से आए हैं तब से बार बार पूछते रहते थे, दादी जी कब मिलेंगे, दादी जी से मिलना कब होगा। तो आज वह शुभ घड़ी, वह शुभ वेला आ चुकी है। आवाज में न आकर अव्यक्त रूप में दादी जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत दिल से, खुशी से दादी जी का अभिवादन है, स्वागत है। अच्छा, आप में से कितने ऐसे भाई बहने हैं जो पहली ही बार दादी जी से नयन मुलाकात कर रहे हैं? हाथ ऊपर करो, पहली बार। देखो दादी जी, हमारी परम आदरणीय दादी जी मुख्य 3 दादियों में से एक हैं। दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी और दादी रतन मोहिनी जी। समग्र टीचर्स बहने, जो भी भारत देश की हजारों टीचर्स बहने हैं ना, उन टीचर्स बहनों का संपूर्ण ट्रेनिंग का प्रोग्राम, भट्टियों के प्रोग्राम, उनकी देखभाल, सब कुछ कारोबार दादी जी करते हैं। राजस्थान, टोटल राजस्थान जोन के भी दादी जी मुख्य संचालिका है। यूथ विंग के दादी जी चेयरपर्सन है। हम सभी दादी जी को यूथ दादी कहते हैं, यूथ दादी। हमेशा सभी के अंदर उमंग उत्साह भरना, ये दादी जी का परम लक्ष्य रहता है। आज हम सब के बीच में पधारे हैं तो हिसार सेवा केंद्र की तरफ से ब्रह्मा कुमारी अंतिमा बहन और बहुत ही पुराने बाबा के रतन हैं गुलशन भाई, आप भी आगे आएंगे। और गुलदस्ते से हमारी दादी जी के आगमन की खुशी को अभिव्यक्त करेंगे। हम सब तालियों से दादी जी का स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी बहुत अच्छी एकाग्रता को धारण कर लेंगे, क्योंकि दादियों के मुख से जो बोल निकलते हैं वो शब्द नहीं होते हैं, वो वरदान होते हैं, महावाक्य होते हैं। तो अच्छी एकाग्रता से हम सब श्रवण करेंगे परम आदरणीय दादी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तीन बार ओम शांति का अर्थ तो समझ गए है ना? समझ गए है क्यों हम 3 बार बोलते हैं? कि हमें सदा ये स्मृति रहे जब भी हम शरीर के कोई भी आर्गन के द्वारा कर्म करना शुरू करें तो हमें फौरन स्मृति रहे। कौन सी स्मृति? इस शरीर को चलाने वाली कौन? बोलो, मैं शुद्ध आत्मा। जब हम ये याद रखेंगे ना, मैं शुद्ध आत्मा, तो शुद्ध को कौन याद आएगा? शुद्ध आत्मा किसको याद करेंगी? सर्वशक्तिमान परम आत्मा को। परमात्मा जो हम सर्व आत्माओं का एक पिता, ऐसा कोई पिता देखा जिसको इतने बच्चे हो? है कोई दुनिया में ऐसा बाप? हाँ, हर एक कहता है मैं भगवान का बच्चा हूं। मानते हो ना? मानते हैं? अभी बैठे थे तो क्या याद रहा, कौन याद रहा, किसकी स्मृति में बैठे? बच्चा चाहे माँ बाप को याद करे या न करे, परंतु बच्चे को माँ बाप की याद बनी रहती है, क्योंकि बच्चे को बचपन में प्यार देके बड़ा करने वाला कौन? माता ही तो है। और बड़े होते लायकी पर लगाने वाला कौन? पिता ही तो होते हैं ना। तो मात पिता का प्यार बच्चे को आगे बढ़ाता है, और वो प्यार जब माँ बाप का है तो बच्चे का भी है। तो हम सब एक बाप के बच्चे हैं। भगवान का तो हम बच्चों पर प्यार है ना? है कैसे है? गायन है भगवान का, वो रहम दिल है, सुख का सागर है, सर्व के दुख हरता सुख करता है। सर्व के, एक का नहीं, पर सर्व के दुख हरता सुख करता है। क्यों? क्योंकि सर्व का पिता है। अब जो सर्व का पिता है, आज दुनिया उसको क्या मानती है? क्या मानती है? भगवान सर्वव्यापी है। राइट है बात? राइट है? राइट है जो समझते हैं, ये राइट है। परमात्मा सर्वव्यापी है, जो समझते हैं राइट है वे हाथ उठाओ। कोई नहीं, एक। अच्छा, सर्वव्यापी नहीं है तो क्या है? सब याद करते हैं, सर्व उसको याद करते हैं, चाहे कोई जानता है या नहीं जानता है, कोई मानता है या नहीं मानता है। देखो आगे, अभी तो फिर भी सभी कहते हैं मानते हैं, पर कुछ समय पहले कहीं कहते हैं हम भगवान को मानते नहीं। अरे कैसे नहीं मानते हो? बिना बिना रीति से फिर प्रश्न करो तो समझ जाते हैं। तो जब सभी भगवान को मानते हैं, तो जिसको मानते हैं जरूर उन्हें कोई ऊंचे से ऊंचा कार्य किया है, तब तो उनका यादगार हम सब के दिलों में है। ये तो विवेक की बात है ना। क्यों सब याद करते हैं? जानते नहीं, पहचानते नहीं, उनका कोई नाम रूप नहीं, फिर भी अनेक नामों से उसको याद करते हैं। अनेक नामों के कारण अनेक रूप उसके बना दिए हैं, और अनेक रूप बनाने के कारण उसको सर्वव्यापी कह दिया। सर्वव्यापी कहने की उनकी भावना तो ये कि हमें उनकी याद बनी रहे, परंतु ये बात यथार्थ तो नहीं ना। तो भगवान स्वयं कहते हैं मान्यता तो भावना के अनुकूल रखी, पर सर्वव्यापी मानते मानते मुझे क्या बना दिया? पूरी पहचान न होने के कारण कहा सर्वशक्तिवान बाप सर्व के सदगति दाता, सर्व के दुख हरता सुख करता, इतना ऊंचे ते ऊंचा कार्य कराने वाला, सबको सुखी बनाने वाला। देखो कभी भी अशांति होंगी और अगर बहुत दुखी होके और दिल से भगवान को याद करेंगे तो उस घड़ी के लिए शांति का अनुभव करेंगे ना, करेंगे नहीं करेंगे, कितना भी दुखी हो। परंतु जब दुखी होकर फिर भी शांति देने वाला, फिर भी सुख देने वाला सुखदाता बाप ऐसे अगर प्यार से याद करते हैं तो उस घड़ी मन के अंदर दुख से परे हो जाते। होता है ऐसा? है किसको अनुभव? है किसको अनुभव? माताओं को थोड़े जास्ती अनुभव होगा, है ना ऐसा? इसलिए देखो भगवान कहते हैं भले माता पिता स्त्री पुरुष भाई बहन है समान, फिर भी भावना में विशेष पाठ किसका किसका? भगवान भावना का भूखा है, ऐसे कहने में आता है ना। सुना है कभी? सुना है भाई? सुना है? तो भावनाएं माताओं में जरा विशेष होती है ना, मानते हो ना? आप लोग भी मानते हैं ना? इसलिए भगवान जब सृष्टि पर आते हैं, भले जानता कोई नहीं कब आता है, किस रूप में आता है, क्या करता है, जानता नहीं कोई, पर मानते सभी है, मानते हैं हम, मानते हैं ना? जो पहली बार आए हैं इस मधुबन में, हाथ उठाया ना अभी, मानते हैं ना सभी? तो भगवान जिसको हम सब मानते हैं पर जानते नहीं है, लेकिन विवेक से अगर हम काम लें, जिसको हम मानते आते हैं जरूर है उसने कोई सबसे ऊंचा कार्य किया है, तब तो उसको सभी मानते हैं। विवेक क्या बोलता है? कहेगा विवेक ऐसा? कहेगा? सभी का कांड नहीं हिलता है। आवाज न करे कान से तो करे जो बात लगती है ना, हाँ बरोबर राइट है, ऑटोमेटिकली कांड हिलता है, हिलता है या नहीं? तो भगवान ने जरूर कोई ऊंचे ते ऊंचा कार्य किया है, तब तो सभी केवल दुखी ही नहीं, परंतु भले जिनों को आज की दुनिया में सुख के साधन बहुत है, परंतु आज की दुनिया में कितने भी सुख के साधन हो, लेकिन मन का सुख, सदाकाल का सुख, मन की शांति है किसको? सदाकाल की। इसलिए सदाकाल के लिए सुखी बनाने वाला, सदाकाल के लिए शांति देने वाला, बल्कि सर्व प्राप्ति संपन्न बनाने वाला, इसलिए भगवान को सर्वशक्तिवान अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने। व्रत में देवताएं होकर गए हैं जिन्हों की आज तक हम मूर्तियां मानते पूजते आते हैं। ये पता नहीं है कि देवताएं कब थे, जास्ती में जास्ती कहेंगे सतयुग में थे, स्वर्ग में थे। स्वर्ग कब था? आज दुनिया स्वर्ग नरक, नरक स्वर्ग, बोलो। आज सारी दुनिया में दुख शांति या सुख संपन्न, कितने भी शाहूकार हो, कितने भी संपत्तिवान हो, आज कहेंगे कुछ समय पहले समझते थे अमेरिका बहुत शाहूकार है, ठीक है ना, अमेरिका अमेरिका में रहने वाले, क्योंकि भारत से जाते हैं तो जाके शाहूकार बनते हैं ना, पर मेहनत करके बनते हैं ना, ऐसे ही शाहूकार नहीं बनते हैं, फिर भी मेहनत करने पर कमाई होती है, पैसा मिलता है और आराम से रहते हैं, इसलिए कहते हैं अमेरिका में बहुत पैसे हैं, पर वो भी अंदर से सुखी है या दुखी है, उनको इतना होते भी लालच है और भी चाहिए और भी चाहिए और भी चाहिए, है ना। परंतु भगवान हम बच्चों को, हम मानते हैं ना ये भारत भगवान की भूमि है, गाया जाता है ना, गाया जाता है ना, भले जानते नहीं है पर ये जो मान्यता चली आ रही है, भारत भगवान की भूमि है, भारत में भगवान को भिन्न भिन्न रूपों से भिन्न भिन्न नामों से मानते हैं, पूजन करते हैं और बड़े प्रेम से, और सचमुच जब प्रेम से श्रद्धा से उसका पूजन करते हैं तो उनकी भावना भी पूरी होती है, इसलिए कहते हैं भगवान तो भावना का भूखा है। अब ये सब बातें जो गायन में है भगवान के महावाक्य है, जब जब धर्म की अति ग्लानि है, जानते हो ना, सुना हुआ है ना श्रोमणी श्रीमद् भगवत गीता के अंदर, जब जब धर्म की अति ग्लानि तब तब मैं साधारण रूप में गुप्त वेश में आता हूँ, भगवान उवाच है, वाच्य कैसे करेंगे, मुख से करेंगे ना, भगवान को मुख कहाँ से आया, जब उसका शरीर दिखाई नहीं पड़ता है, जब उनका कोई शरीर का नाम एक नाम से निश्चित नहीं मानते हैं, उनकी महिमा गाते गाते भिन्न भिन्न प्यार के नाम दे करके मानते हैं, तो भगवान कहता है मेरे स्वरूप का यथारथ ज्ञान यथारथ पहचान मैं स्वयं ही देता हूँ, मेरे स्वयं मेरा परिचय कोई नहीं, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचे तेरे काम है, क्या उसके ऊंचे ते ऊंचे काम, पतित दुनिया को पावन बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना, नई दुनिया बनाना, अब दुनिया को नया बनाना है किसकी ताकत, अब कितनी दुनिया की वृद्धि है, ऐसी दुनिया और नई बने माना पुरानी खत्म हो जाए, नया मकान बनाओ तो पुराने को छोड़ेंगे ना, छोड़ेंगे ना, छोड़ेंगे या नहीं, वो भी रखेंगे, आज के दुनिया में तो रखते हैं थोड़ा, भाई किराए पे दे दो तो उसी भी कमाई होती जाए, परंतु अगर पुराना हो, पुराना ये सृष्टि पुरानी अर्थात जब सृष्टि में रहने में कोई सुख न हो, और अगर कुछ सुख हो तो अल्पकाल, परंतु अधिक समय दुख, जो भी सुख के साधन, पहले सुख देते हैं, आज साइंस ने कितने सुख के साधन दिए, एरोप्लेन निकला तो कितने खुश हो गए, कितनी दूरी तक कितने में पहुंच गए, आज एरोप्लेन क्या कर रहे हैं, उन्हीं एरोप्लेन के द्वारा दोनों काम कर रहे हैं, वो भी सुख का भी कर रहे हैं और फिर एक धक से शहर के शहर तबाह, ये सब निशानियां कलयुग का अंत और कलयुग जाएगा, पुराना तब खत्म होता है जब नया रहने का स्थान तैयार करते हैं। तो भगवान गुप्त रूप में सृष्टि को नया बनाने का कार्य करा रहे हैं, गुप्त ही गुप्त, प्रत्यक्ष नहीं दिखाए। इतनी सृष्टि को नया कैसे बनाएगा? अगर शुरू से ही प्रत्यक्ष करे तो कोई करने देगा? कहेंगे ये कौन। इसलिए भगवान के माँ वाक्य मेरे को कोई पहचानता नहीं, कोई जानता नहीं, परंतु मैं आता हूँ सृष्टि में जब जब धर्म की गिलानियां, क्योंकि धर्म यथार्थ क्या है मानते हैं सभी, परंतु यथार्थ धर्म की पालना करना, जीवन के अंदर धर्म को मानना और धर्म युक्त कर्म करना आज के दुनिया में बहुत कोई विरला यथार्थ हर प्रकार से। परंतु हमारे भारत में उन्हों का गायन और पूजन है जिनको हम देवी और देवता कहते हैं। उन देवताओं का और देवताओं में मुख्य श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ये बातें 3 दिन के अंदर थोड़ी थोड़ी सुनी होंगी और थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी, क्योंकि भारत में मानते तो है ही, देवताओं को मानते हैं, मंदिर है, पूजा होती है, मूर्तियां हैं, पर कौन थे, कभी थे? हमारे पूज हैं, पूज कह के हम खुश होते हैं। तो अब ये भी बात सुन तो ली होंगी, परमात्मा गुप्त रीति से ये अपना कार्य भगवान को सृष्टि का रचता कहा जाता है। ये किसको भी पता नहीं है कि सृष्टि कब रची गई, कैसे रची गई, और रची गई जो रचा जाता है वो कभी तो बदलेगा ना, क्योंकि चलते चलते जीवन जन्म होता है, बड़ा होते होते देखो समय बदलता है, हम सब जानते हैं ना, आज से 50 वर्ष पहले, आज से 200 वर्ष पहले फर्क है दुनिया में। अपनी अपनी जीवन के होते, जितनी भी जिसकी आयु हो, अपने आयु के होते, जब बच्चे थे तो कैसे थे, आपस में व्यवहार कैसा, अपने परिवार का व्यवहार कैसा और आज कैसा है ना, अंतर दिन प्रतिदिन बहुत अंतर है ना। तो ये नेचुरल है, सृष्टि का नियम है। कोई भी चीज देखो, हम बीज डालते हैं, झाड़ पैदा होते हैं, शुरू में कितने अच्छे फल, जितना बड़ा होगा धीरे 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 पुराना होगा, झाड़ नहीं होगा, वृद्धि होती जाएंगी होती जाएंगी, ये स्वाभाविक है। तो यह सृष्टि भी अपनी आयु भी, बचपन में क्या कैसा बच्चा सबको प्यारा लगता है, लगता है ना, जिसको भी देखेगा वो भी खुशी से देखेगा, जो गोदी में लेगा हंसता बहलता रहेगा। धीरे धीरे बच्चों में भी फर्क आ गया। तो ये सब दिखाता है ये सृष्टि का नियम जो अनादिकाल से चला आता है। और हर वस्तु पहले कितनी सुंदर, धीरे 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 जब अंतिम माना बड़े अपनी फुल एज में आ जाती है तो उसमें बहुत परिवर्तन आता है। आज सृष्टि के अंदर पहले इसी भारत में एक धर्म एक राज, जब देवताओं का राज्य तो एक धर्म एक ही देवताएं, देवताओं के समय और कोई धर्म था, द्वैत का नाम नहीं और कोई धर्म नहीं, और अब अनेक धर्म अभी के पहले भी जानते हैं। ये धीरे धीरे भारत में कितने धर्म हैं, भले हिंदू कहलाते हैं पर हिंदुओं के भी कितने धर्म, कोई किसको मानता कोई किसको, भले सभी को भी मानते हैं, अनेकों को मानने वाला, अनेक मतें अनेक धर्म, भाई सभी को मानो, सभी को मानो पर कर्म क्या करो, कर्म धर्म के अगर सभी को मानेंगे तो कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा ना। तो ये भिन्नता ये सृष्टि का नियम है। कोई भी वस्तु, वस्त्र नया लियो, नए की शोभा पहनते 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 पुराना हो जाएगा, कैसा होगा हर वस्तु। तो सृष्टि का भी ये नियम है। हमारा भारत स्वर्ग भूमि था ना, देखा किसने नहीं देखा, फिर हम मानते कैसे हैं। परंतु भगवान की रचना, जैसे हम भगवान को मानते हैं, उनकी रचना स्वर्ग थी। भगवान ने स्वर्ग की दुनिया रची, जिस स्वर्ग में एक धर्म एक राज, जिस कारण भारत को आज भी भगवान की भूमि कहते हैं, क्योंकि भगवान ने भारत में आकर के नई दुनिया, पावन दुनिया, पवित्र दुनिया रची, जिसमें एक भी मनुष्य इम्प्योर नहीं, कोई में भी अधर्म नहीं, सर्व एक को मान्य, एक धर्म माना सब आपस में, हम सब एक पिता की संतान, एक रचता की हम रचना है। अभी भी मानते हैं हम सब एक भगवान के बच्चे हैं, परंतु धर्म तो अनेक मानते हैं। और धर्म के कर्म, धर्म माना धर्म का पहली धारणा कौन सी, धर्म अर्थात जहां शुद्धता है, पवित्रता है, जहां दिव्यता है। अब हमारे जीवन के अंदर ये बातें मानते हुए भी देखें जीवन के कर्म तो क्या, पर हमारे विचारों के अंदर कितनी शुद्धता है। आज हम मन को एकाग्र करने चाहते हैं, कितनी बातें आकर के हमारी एकाग्रता को भंग करती है ना, और उसके लिए हमें कितना प्रयत्न करना पड़ता है। ये बेचारे सन्यासी जाते हैं जंगलों में, जाके कंदराओं में तपस्या करते हैं, फिर भी कहते हैं मन वश करना सहज नहीं है। और हम अभी भगवान ने जो हमें विधि सिखाई है, क्योंकि भगवान गुप्त रूप में आता है, प्रत्यक्ष रूप में आए तो इतने सब जनों के अंदर धर्म की शक्ति नहीं, वो भगवान के आगे कैसे अपने जीवन को चला सकेंगे। तो पहले हमारे अंदर धर्म की शक्ति जागृत हो, इसलिए भगवान को भी अपने रूप को गुप्त रखना पड़ता है। और गुप्त रूप में आकर के और जो जो उनके नजदीक आते हैं उनके सामने प्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष माना रूप ये नहीं बदलता है, पर उन अपनी शक्ति का प्रमाण उनको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। जिस शक्ति का प्रमाण कि जो शिक्षा देती है, जो महावाक्य उच्चारते हैं, जो भावना से सन्मुख आते हैं और शर्म खाने से उस भावना से भगवान का रूप उनको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। भले रूप साधारण, पर साधारण रूप में उनको वो ही दिखाई देता है, क्योंकि मैं आत्मा भी देखने में नहीं आती हूँ, परंतु वो चेतन शक्ति जो अंदर है, आत्मा परमात्मा को पहचानती है, आत्मा परमात्मा को याद करती है। इसलिए हमारे लिए पहली शिक्षा, हे मनुष्य आत्मा तू अपने को पहचान, इस शरीर को धारण करने वाली मैं शुद्ध आत्मा हूँ। प्रमाण तो हम सब मानते हैं, शरीर छोड़ता है मनुष्य, कहेंगे आत्मा निकल गई, जिसका कई प्रमाण बताते हैं ना। साइंस वालों ने कितनी कोशिश की कि हम आत्मा को देखें कैसे निकलती है, प्रवेश करना तो कोई देख नहीं सकता क्योंकि वो गर्भ में कैसे प्रवेश करती है कौन जान सकता है, पर चलो जब निकलती है तब तो देख सकते हैं ना कितने प्रयत्न की है ना, कहानियां सुनी है ना अभी की भी। तो भगवान इतनी सूक्ष्म हस्ती है, हस्ती भी है और शक्ति है, जिस कारण उसको सर्वशक्तिवान कहते हैं। और हम आत्मा भी, हम आत्मा किसकी संतान, सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान। तो आत्मा भी इतनी शक्तिशाली है जो उनका शरीर लेना और शरीर छोड़ना कोई देख नहीं सकते है। शरीर को देखते हैं, आत्मा को नहीं देख सकते। देख सकते हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं दिखाई पड़ती है। कोई ऐसा होगा साधना करने वाला तो उसको प्रवाह आएगा, वो प्रवाह से परख लेगा, लेकिन उसको देखे और उसको सामने देखना चाहे तो आत्मा अपने परमात्मा पिता को पहचान सकती, जान सकती और स्वयं को उनके आशीर्वाद के पात्र बना सकती। इसलिए अब का समय कई बातें आपको जो नए आए हैं बताई भी गई होगी, समझाई भी गई होंगी, परंतु सुनने में समझ में आती है क्योंकि हमारी मान्यता है। परंतु इतना समझें जो हम अपनी जीवन में धारण कर सके, क्योंकि ये तो हम मानते हैं आज की दुनिया में धर्म को माना जाता है, जो भी बातें धर्म की हम मानते हैं, धर्म माना जीवन में सत्यता, पहली बात सत्यता होनी चाहिए, धर्म माना जीवन में शुद्धता पवित्रता, धर्म माना किसको दुख न दो, न दुख दो न दुख लो, सदा सबको सुख देने की भावना रखें। अभी ये बातें हम कहते हैं, हम धारण कितनी करते हैं, अपने जीवन के कर्मों में कितनी ला सके हैं, क्योंकि अब हमारी बुद्धि दो तरफ धर्म को मानती है, धर्म किसको कहा जाता है जानती है, पर करने के लिए दुनिया ऐसी है अगर हम सत्यता से चलेंगे तो आज के दुनिया में चलना मुश्किल है, ऐसे कहेंगे ना, कहेंगे ना ऐसे। विशेष भाइयों से पूछती हूँ तो ये सारी मान्यताएं जो हमारी बदलती आई है, सत्यता हम आत्माओं का, जब आत्मा सत्य है अविनाशी है, सत्य वस्तु अविनाशी है। देखो सोना है, आग में डालो तो भी खत्म नहीं होगा, होगा खत्म होगा, सच्चा सोना अलाय होंगी वो जल जाएंगी, पर उसका जो सोना होगा वो बच जाए, होगा ना ऐसा, है ना, सबको अनुभव मानते हैं ना। अब ये सब दृष्टांत है, वास्तव में मैं आत्मा, देखो शरीर छोड़ती है, शरीर को भस्म करते हैं, आत्मा निकल जाती, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, न मरती है न कटती है न जलती है न डूबती है, है कहाँ, छोड़ती है तो कहाँ जाती है। इसलिए आत्मा का इस सृष्टि कर्म क्षेत्र में शरीर धारण किया तो इसको जन्म मरण के चक्कर में आना ही पड़ता है। परंतु जब शुरू में जो आत्माएं, जिन आत्माओं को भगवान ने आकर के ऐसा ऊंच बनाया, जो जीवन में अपने कर्मों को बदल दिया, अपनी वृत्ति को बदल दिया, अपनी दृष्टि को बदल दिया, जिन्होंने जीवन में इन सब कर्मों को बदल के और अपनी शुद्ध दृष्टि, शुभ वृत्ति और आपस में व्यवहार के अंदर एक दो के प्रति प्रेम भावना, एक दो के प्रति सुख देने की, हर एक चाहता है ना मुझे सुख मिले। जब हम चाहते हैं कि मुझे दूसरे से सुख मिले तो मैं सबको सुख देता हूँ, पूछूं अपने आप से तो मैं पहले अपने में ये धारणा करूं मेरे से सबको सुख मिले, अर्थात मैं जिसको भी देखूं भगवान का बच्चा है। देखो जब कहो भगवान कहो तो अंदर की भावना बदल जाती है ना, चेहरे की रौनक, भगवान नाम लेने का भाव, और उस समय उनको अगर याद करके उनके महिमा के गुण गाते रहे तो हमारे चैन नैन कैसे हो जाते। ये अपना ही स्वयं को स्वयं का मिसाल, परंतु ये सब मानते हुए जानते हुए हमारे जीवन में ये बातें धारण कैसे हो, ऐसा कोई सिखाने वाला चाहिए ना। मानते तो हम सब हैं, सिखाने आज धर्म के ठेकेदार भी बातें कितनी ऊंची बताते हैं, सिखाने के लिए उन्हों के अंदर भी इतनी शक्ति, जितनी जिसमें शक्ति है उतना औरों को सिखा लेते हैं। लेकिन मैं जो हूँ और जैसा हूँ, इसलिए भगवान के महावाक्य, मैं जो हूँ और जैसा हूँ, मेरे स्वरूप का यथारत परिचय मैं स्वयं ही आकर के देता हूँ। तो परमात्मा निराकार इस आकार शरीर के आकार से परे है, पर शरीर को चलाने वाला आत्मा भी शरीर के आकार से अलग है, परंतु इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा हूं। और सचमुच इस बात को अच्छी रीत समझ करके आप उसी को, ये उस बात को याद करके अगर उन्हीं भावनाओं से शांति में बैठेंगे तो आपको अंदर वो शक्ति महसूस होंगी, रूप कोई नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आत्मा का स्थूल रूप नहीं है जो ये आंखें देखे महसूस, उसके शक्ति को महसूस करेंगे। उसकी शक्ति क्या महसूस होंगी, एक तरफ शांति, और वो शांति भी खुशी की, अंदर खुश होते रहेंगे। जब शांति खुशी देती है तो अंदर में एक वो ऐसी भावना आती है जो उस समय और बातें जैसे कि भूल जाती है, बस उसी खुशी में उसी रूप में मग्न हो जाते हैं। जब ऐसे हम उसमें मग्न होते हैं तो परमात्मा का उस समय स्मरण करो तो उनकी याद के सिवा और कोई याद नहीं आएगा, उसमें मन लग जाएगा। इसलिए इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर यही शिक्षा दी जाती है, हे आत्मा हम भी जब पहले पहले आए तो ये आत्मा का लेसन हमको पक्का कराया गया, जो हमें ऐसी अंदर में चित बना लग गई, जो हम उठे बैठे चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर अंदर में मैं आत्मा इस शरीर को चलाता हूँ, मैं आत्मा इन आंखों के द्वारा देखता हूँ, मैं आत्मा इस मुख के द्वारा बोलता हूँ। अंदर ये स्मृति बढ़ती गई, जैसे जैसे ये स्मृति बढ़ती गई तो जैसे कर्म कर भी रहे हैं, परंतु अंदर की कोई शक्ति मेरे से करा रही है। ये स्वयं के अंदर की महसूसता अंदर में वो शक्ति जागृत करती है जिससे हमारे अंदर सत्यता की शक्ति जागृत होती है। जो भी करें सत्य को समझ के करें, भले मेरी उस बात को उस समय कोई मानता है या नहीं मानता है, परंतु वो शक्ति सत्य स्वयं ही सिद्ध कर लेता है। पहले न मानेंगे, आगे चल के मानेंगे, पर मैं तो अडोल, मेरे अंदर हलचल नहीं होंगी। झूठ बोलेंगे, अनेक संकल्प चलेंगे, उसको फिर और बदली और उसमें विचार आते रहेंगे। तो ये दुनिया में रहने का सबको अनुभव है, जिससे अंदर में दुखी भी होते हैं, पर कोई सच्चा रास्ता बताए। भगवान के महावाक्य, इसी भारत में स्वर्ग था, यही भारत अब नरक समान है। इसी भारत में संपूर्ण सुख था, यही भारत अभी, क्योंकि पहले पहले हिस्ट्रियां बताती है ना, सोमनाथ के मंदिर को लूट के गए, कैसे वो सब दूसरे दूसरे जैसे जैसे और धर्म आते गए, भारत से ही तो शाहूकार बने। अभी ये हिस्ट्री कौन बताए, भगवान ही बताता है। तो अभी भगवान गुप्त रूप में आगे चल करके, अभी भी शायद एक दो दिन है ना आप लोग, तो थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री सुनते रहेंगे, क्योंकि हम अभी थोड़े समय में क्या बातें कितनी बता सकेंगे। सार यही है, जो भी नए नए आए हैं, वो भी जरूर है, जो सेंटर वाले आए हैं उनसे संपर्क होगा, थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, तो अगर उसमें रेगुलर आप थोड़ा कम से कम 7 दिन रेगुलर इन बातों को समझ करके और अभ्यास करेंगे संग से, तो इन बातों को यथारथ रीति से थोड़ा अनुभव में ला सकेंगे। और अनुभव करने के बाद अगर संग से चलेंगे कोई भी चीज, देखो पढ़ाई है कितना समय, राज विद्या कितना समय पढ़ते हैं, तभी कोई लायक बनते हैं शरीर निर्वाह के लिए, कमाई करने के लिए। तो ये तो हमें आत्मा के लिए कमाई करनी है, जो आत्मा सत्य थी है, अभी भी आत्मा सत्य है, परंतु हम जैसे कर्म करते हैं उस कर्मों के संस्कार आत्मा में ही भरते हैं ना, उसी अनुसार दूसरा जन्म तीसरा जन्म कर्मों के चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में चलती है। अब इस चक्कर में आते हम सदा सुखी रहें, दुखों से मुक्त रहें और सदा अपनी आनंद की खुशी की जीवन व्यतीत करें, फिर से परमात्मा पिता, पिता को रहम दिल कहा जाता है, परमात्मा को कल्याणकारी माना जाता है। जो हम आत्माओं का आके कल्याण करते हैं, जो हमें स्वयं की पहचान देकर हम आत्माओं का संबंध फिर से अपने से जुटा करके हमारे अंदर वो शक्ति पैदा करते हैं, जो हम अपने मन को एकाग्र कर सके, अपना बुद्धि एक परमात्मा में लगा करके और उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करके इन कर्म इंद्रियों से ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें जिन कर्मों से हमने विकर्मों का खाता बना करके पाप कर्म करके अपने दुख का खाता बनाया है, उन्हीं कर्म इंद्रियों से हम ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें जो फिर हमारे दुख का खाता खत्म हो जाए और फिर से हमारा नया जीवन सुख का खाता बन करके हम ही आत्मा, शरीर बदलती है, रूप बदलती है, अभी हमारे शरीर पांच तत्व तमो प्रधान है, फिर ये पांच तत्व भगवान के आने से और इन शिक्षाओं से, जैसे हम शिक्षाओं को धारण करते हैं प्रकृति के ऊपर भी वो प्रभाव पड़ता है, प्रकृति भी बदल करके सतो प्रधान बन जाती है, तमो प्रधानता, ये कलयुग दुख ये सब खत्म हो करके सारी दुनिया का परिवर्तन जो गाया हुआ है, अनेक धर्म अनेक अधर्म, धर्म जिसके अंदर कर्म धर्म के नहीं है उसको क्या कहेंगे, तो अनेकों का विनाश, एक आदि सनातन सत्य धर्म की स्थापना। इसलिए परमात्मा पिता हम आत्माओं को यह स्वयं की पहचान देकर, परमात्मा की भी और आत्मा की भी ऐसी पहचान देते हैं जो हम अपनी आत्मा स्वरूप को जान, अपने पिता को पहचान, उनके साथ अपना मन बुद्धि एकाग्र रहे, जिस कारण एकाग्रता की शक्ति महान मानी जाती है। सन्यासी बेचारे जंगलों में जाकर तपस्याएं करते हैं, भगवान हमें आकर के जीवन में रहते कर्म करते, लेकिन हमारे मन बुद्धि ऐसा शुद्ध हो जाए परमात्मा के संबंध से, वो शुद्धता जीवन में धारण करके पवित्र जीवन जो गाया हुआ है, ग्रस्त धर्म ग्रस्त आश्रम ऐसा बना करके जीवन में श्रेष्ठ कर्म कराकर फिर ये पुराना शरीर छोड़ के नया सतो प्रधान शरीर जो देवताएं गाए गए हैं। ये बातें आपको और भी थोड़ा आगे समझ में आएंगी कि कैसे हम आत्मा 84 का चक्कर भोग के अभी हमारा पूरा हुआ, अभी हम फिर नई दुनिया के लिए ये तैयारी कर रहे हैं, आत्मा भी पवित्र बने, हमारी विचारधारा सदा शुद्ध रहे, हमारी दृष्टि वृत्ति सर्व के प्रति, जब एक पिता की संतान है आपस में एक परिवार, परिवार के अंदर वो स्नेह भावना आत्मक प्यार, आत्मक प्यार है तो हमें परमात्मा से वो वर्षा प्राप्त होता है, जिस वर्षे के अंदर सर्व प्राप्तियां संपन्न है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। तो अभी जो नए नए आए हैं, सुना हुआ भी है 2-3 दिन बातें, और भी 1-2 दिन है तो सुनेंगे, फिर भी वहां जाकर के अगर 7 दिन रेगुलर, जिसमें ये हमारा यज्ञ कैसे स्थापन हुआ, परमात्मा किस गुप्त रूप में आकर के कैसे इस यज्ञ की स्थापना की है जो गाया हुआ है, रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ, जिसमें ही अंतिम सृष्टि की आहुति पड़ती है और सत्युगी नई दुनिया। लोग तो दिखाते हैं सारा समुद्र, समुद्र के अंदर पानी के अंदर श्री कृष्ण तैरता तैरता आ गया, अभी ये महानता क्यों, कुछ समय सृष्टि वैरान है, अधर्म विनाश, इतनी सारी भरी हुई सृष्टि और एक सत धर्म, एक श्री कृष्ण पहला पहला बच्चा सत्य का, वो ऐसे लगता है जैसे सारी दुनिया में जैसे पानी पानी है, पानी पानी नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा मेजॉरिटी पानी। धरती पे विनाश होगा तो क्या होगा? अभी जहाँ विनाश होता है बाम छोड़ते या क्या होता है, देखा ना अभी अचानक अचानक केदारनाथ का समाचार सुना ना, कैसे पानी 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 जो भी आए, मकान गिरते जा रहे हैं पानी में बहते जा रहे हैं, जो चलते जा रहे हैं पानी में बहते जा रहे। ये तो थोड़ा थोड़ा ये रिहर्सल है विनाश की। जब देवताएं तैयार हो जाएंगे गुप्त वेश में, फिर वो अपनी शक्ति से उस समय रहेंगे और बाकी सा परिवर्तन देखना है तो स्वयं के अंदर आत्मा की शक्ति पवित्रता के आधार पर ऐसी जागृत करनी है जो ऐसे समय पर हाँ वो सत धर्म की स्थापना करने वाले कैसे अपना नया शरीर लेकर के सृष्टि पर अवतरित होते हैं, स्वयं भी कैसे ये पुराना शरीर छोड़कर और नया शरीर धारण कराते हैं, पहले बाप के साथ मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करके फिर इस सृष्टि में जीवन मुक्त जीवन जिसके अंदर पवित्रता सत्यता दिव्यता धारणा स्वरूप है और ऐसी जीवन बिताती है। थोड़े से शब्दों में कहेंगे आप भी भाग्यशाली हैं जो यहाँ पहुंचे हैं, जो पहली बार आए हैं, परंतु कुछ कुछ सुना हुआ होगा, थोड़ा थोड़ा संपर्क होगा, अभी संपर्क को बढ़ा करके संबंध में आओ, परमात्मा को जानते हुए मानते हुए उसको अच्छी रीति जानो पहचानो और उनके इस कार्य का फायदा लेकर के स्वयं भी बाप के इस कार्य में शामिल होकर अपना सत्युग में आने का अधिकार प्राप्त कर लो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब यहाँ आए हैं, एक तरफ तो आपकी स्वागत है और साथ साथ आप बड़े भाग्यशाली है, पर इस भाग्य को समझ करके भाग्य अविनाशी बना करके आप सत्युग में आने का अपना पार्ट बना लो, क्योंकि जैसे कर्म करेंगे ऐसी ही प्रलब्ध पाएंगे। मनुष्य जीवन की यही विशेषता है, अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करता है, अपने भ्रष्ट कर्मों से जीवन में दुख और अशांति का अनुभव करते हुए दुखी भी होते रहते, भगवान को याद भी करते रहते, आशाएं बनी रहती परंतु पूर्ण नहीं कर सकते। लेकिन श्रेष्ठता को धारण कर और परमात्मा के साथ योग लगाने की विधि सीख करके ऐसी शक्ति को प्राप्त करते जाना। ओम शांति शांति। ओम तालियां बजा करके खूब खुशी होती है। हम कहते हैं ये ऐसे इन बातों को इतना समझो जो आपके अंदर खुशी की तालियां बजती रहे और आपका आपका चेहरा सदा खुश नमा बना रहे और आपके चेहरे से लगे कि कैसे भगवान को जान करके अपनी जीवन भगवान की शिक्षाओं पर चला रहे। करूं ऐसी उम्मीद। आए हुए कौन आए हुए हैं? पहले वाले
पहली बार जो आए हैं वो हाथ उठाओ, जो फर्स्ट टाइम पहली बार मधुबन में आए हैं।
करेंगे ऐसे अपने जीवन करेंगे, जाने के बाद उन्हीं सेंटर से संबंध रख करके जिनों के साथ आए हो,
तभी ज्ञान में चलते हैं। 6 महीना 8 महीना साल, कोई को 2 साल 5 साल ऐसे हुआ है दादी।
हाँ, पर अभी तो बहुत फास्ट गति, विनाश में देरी नहीं। अभी अभी आया, अभी अभी आया। देखो मनुष्य याद करके पता नहीं कभी भी अंतिम घड़ी मरने की घड़ी आ जाए तो अच्छे कर्म कर लें। इसलिए इस बात को भी अब जास्ती समय नहीं है, विनाश की तैयारियां जोर शोर से हो रही है, स्थापना की तैयारियां भी भगवान जोर शोर से करा रहे हैं। देखो कितने आ गए हैं, थोड़ा ही सोचा था इतने आएंगे। तो जरा अंदर ऐसी खुशी की लहर यहाँ तो है, सदा खुशियां बनी रहे, सदा आपका खुश नमा चेहरा बना रहे। ओम शांति।
बहुत ही अच्छी तरह से धर्म और धारणा का अर्थ, कर्मेंद्रिय और श्रेष्ठ कर्म का भावार्थ, सत्य परमात्मा क्या है उसकी समझ दादी जी ने हम सभी को दी है। और हमसे अभी एक बहुत अच्छी आशा रखी है कि हम सब मिलकर के अपनी इन श्रेष्ठ धारणाओं को जीवन में अपना कर आगे ते आगे जाएंगे। ठीक है ना? बहुत अच्छा।